हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अनय की बात सुनकर मनस्वी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, और तुम में से किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। और विराज, तुम कुछ ही दिनों में यहाँ से लंदन जा रहे हो, दैट्स फाइनल। अगर भाई नहीं जाना चाहते हो तो? अवंतिका ने आगे आकर जमीन पर पड़े अपने भाई को उठाते हुए पूछा। वो भी मनस्वी की तरफ देख रही थी। मनस्वी पहले ही अवंतिका पर नाराज थी, क्योंकि उसने अनई के बारे में उल्टा सीधा बोला था। लेकिन उसने सीधे जवाब दिया, विराज के पास भी फिलहाल कोई और ऑप्शन नहीं है, और उनकी मर्जी नहीं पूछी जाएगी इन सब में। ये बोलते हुए उसने गुस्से में एक ठंडी सांस छोड़ी और घूमकर सबको देखा, फिर वहां से बाहर जाते हुए आदित्य को भी देखा। ये सुनकर अवंतिका ने कुछ नहीं बोला। विराज के माता पिता ने भी फिलहाल कुछ नहीं कहा, लेकिन विराज की माँ की आंखों में आंसू थे, शायद आदित्य के रूखे बर्ताव की वजह से या फिर विराज की ऐसी हालत देखकर। आदित्य के जाने के बाद सभी लोग सवाल भरी निगाहों से विराज के माता पिता की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन सभी के मन में जो भी सवाल चल रहे थे उनके जवाब सिर्फ और सिर्फ उन दोनों पति पत्नी के पास ही थे। मिस्टर सहगल और उनकी पत्नी के साथ ही विराज को भी शायद इस बारे में कुछ पता था, लेकिन सही या गलत ये वो नहीं जानता था, इसलिए फिलहाल वो भी खामोश था और इस बात का शुक्र मना रहा था कि आदित्य ने उसे छोड़ दिया और पुलिस के हवाले नहीं किया या फिर उसे और ज्यादा नहीं मारा। विराज को अपनी गलती का एहसास नहीं था, लेकिन फिलहाल के लिए वो कुछ नहीं करने वाला था, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए वाला सीन अभी उसके दिमाग में चल रहा था। अनई ने थोड़ा आगे आते हुए पूछा, ये क्या कहकर गया है आदित्य, क्या रिश्ता है आपका उससे? मुझे पहले से ही शक हो रहा था, जिस तरह से आप उसे देखकर रो रही थीं। उनकी आंखों में अभी भी आंसू थे और उनके दोनों बच्चे भी हैरान थे। लेकिन तभी मनस्वी ने बीच में आकर थोड़ी समझदारी दिखाते हुए कहा, रहने दो अनय, अभी ये सही वक्त नहीं है इन सब बातों का। उसने अनय का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। मनस्वी की बात सुनकर अनय ने भी वहां की सिचुएशन पर गौर किया। अभी अभी आदित्य वहां से गया था। वहां पर सभी के होश उड़े हुए लग रहे थे और किसी की भी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो चुप हो गया। उसने इस बारे में उनसे और सवाल नहीं किया, लेकिन उसे अपने सवालों के जवाब तो चाहिए थे और उसने बाद में पता करने का सोचा। अभी फिलहाल के लिए वो पीछे हो गया। मनस्वी ने आगे आते हुए कहा, अंकल आंटी, अगर आप लोग चाहते हैं कि विराज अभी किसी की नज़र में ना आए तो आप लोग यहाँ से जाइए और मैं इसे बाहर भेजवाने का इंतजाम करती हूँ। मनस्वी की बात सुनकर विराज के माता पिता दोनों एक दूसरे का मुँह देखने लगे। विराज तो पहले ही कुछ बोलने की हालत में नहीं था, लेकिन अवंतिका ने बीच में बोलते हुए कहा, लेकिन भाई के तो एग्ज़ाम होने वाले हैं, हमारी एमबीए के एग्ज़ाम हैं, ऐसे कैसे वो यहाँ से चले जाएंगे, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। अवंतिका के बीच में बोलने पर मनस्वी ने उसकी तरफ गुस्से में घूरकर देखा और कहा, अवंतिका तुम्हें सिर्फ एक साल की पड़ी है, शुक्र मनाओ तुम्हारे भाई की पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो रही, नहीं तो जितना आदित्य गुस्से में था देखा नहीं क्या तुमने? मनस्वी के डांटने पर अवंतिका चुप हो गई और नीचे की तरफ देखने लगी। तभी उसकी माँ ने भी आगे आते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो मनस्वी बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, और वैसे भी इसने इतनी बड़ी गलती की है, इसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा मनस्वी बेटा, और आप दोनों चलिए यहाँ से। विराज की माँ ने अपनी बेटी और पति की तरफ देखते हुए कहा। अवंतिका ने वहाँ से जाने से पहले एक बार फिर विराज की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने माता पिता के साथ वहाँ से चली गई। विराज के चेहरे पर काफ़ी चोट आई थी, दो तीन जगह पर चोट के निशान काले पड़े हुए थे और होंठ के किनारे से खून भी निकल रहा था, जिसे वो अपने अंगूठे से पोंछते हुए उठकर खड़ा हुआ और साइड में पड़े सोफे का सहारा लेकर वहां बैठने की कोशिश की। उसे वहां पर बैठे हुए देखकर अनय आगे आते हुए बोला, देखो मनस्वी, जो कुछ भी हो जाए ये लड़का यहां पर नहीं रहेगा हमारे साथ। इस बार अनय ने बहुत ही गुस्से में अपना फैसला सुनाते हुए ये बात कही और वो गुस्से से घूरकर ही विराज की तरफ देख रहा था। अनय की बात सुनकर विराज बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, अरे रिलैक्स, कूल डाउन जीजू, आप इतना क्या भड़क रहे हो, आखिर आपका मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है? विराज की बात सुनकर अनय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो आगे आकर उसका कॉलर पकड़कर उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला, मेरा नहीं लेकिन जिसका बिगाड़ा है ना, तुम्हें पता नहीं है वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, दोस्त से भी ज्यादा बढ़कर वो मेरा भाई है, और तुमने उसकी बीवी पर हाथ डालने की हिम्मत की, तुम्हारे हाथ तोड़ देता मैं अभी, लेकिन बस। इतना बोलते हुए अनय ने एक गहरी सांस ली और फिर मनस्वी की तरफ देखा। मनस्वी भी बीच में आकर अनय के हाथ से विराज का कॉलर छुड़वाते हुए बोली, रहने दो अनय प्लीज, ऐसे ऐसे मारने पीटने से कुछ नहीं होगा, तुम भी ये बात जानते हो, और ठीक है ये यहाँ पर नहीं रहेगा, मैं अभी इसका रहने का इंतजाम कहीं और करवाती हूँ, वैसे भी एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं इसे आउट ऑफ कंट्री भिजवा दूंगी, आई प्रॉमिस। मनस्वी ने बहुत ही मजबूती से अनय की तरफ देखते हुए ये बात कही और उसका हाथ पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन अनय इस वक्त काफी गुस्से में था। उसने तुरंत ही झटक कर मनस्वी का हाथ अपने हाथ से हटा दिया और वहां से आगे चला गया। उसे वहां से जाते हुए देखकर मनस्वी ने पीछे से एक ठंडी सांस छोड़ी और फिर विराज की तरफ देखते हुए बोली, सुधर जाओ विराज, अब कभी भी ऐसा कुछ मत करना। तुम्हें पता भी है सुनैना मरते मरते बची है तुम्हारी वजह से, और इसे तुम प्यार कहते हो, ये सब तुम्हारी सनक, तुम्हारा पागलपन है बस और कुछ नहीं। सुनैना के बारे में अब विराज को ये बात पता चली थी, नहीं तो जिस दिन सुनैना को चोट लगी थी विराज के हमले की वजह से, उस दिन के बाद से ही विराज पहले आदित्य की कैद में था और उसके बाद से उसे बाहर की दुनिया से रिलेटेड कुछ भी न्यूज और जानकारी पता नहीं चल पाई थी। वो पूरी तरह से अंधेरे में था, लेकिन अब इसके बारे में जानकर उसे थोड़ा बुरा लगा। इसलिए मनस्वी ने जब सुनैना की हालत के बारे में बताया तो विराज ने बहुत ही गिल्टी फील किया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए और वो सिर झुकाकर नीचे देखते हुए बोला, आई एम सॉरी दी, बट मैं सुनैना को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इतनी बड़ी चोट तो दूर की बात है, मैं तो उसे जरा सी तकलीफ में भी नहीं देख सकता। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तो उस आदित्य पर अटैक कर रहा था, लेकिन तभी सुनैना बीच में आ गई और गलती से वो उसे लग गया, विराज ने जैसे सफाई पेश करते हुए कहा। उसकी ये सफाई सुनकर मनस्वी को और भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, अच्छा ये बताओ आदित्य को मारना कहाँ से जस्टिफाइड है, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तुम कैसे उनके बीच में आने के बारे में सोच भी सकते हो? ये गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत, वो भी बिना उस लड़की की मर्जी के, तुमने उसे किडनैप किया, आखिर करना क्या चाहते थे तुम? मनस्वी ने बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए ये सारे सवाल किए। मनस्वी का सवाल सुनकर विराज चुप हो गया और उसका चेहरा एकदम ही लटक गया। वो नीचे फर्श की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू ही नजर आ रहे थे।
लेकिन ये आंसू नौटंकी वाले हैं या फिर असल के, ये मनस्वी को समझ नहीं आया, लेकिन उसने उसी तरह से रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, दी प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था और मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं वो मुझे लगा था कि वो अपने रिश्ते में खुश नहीं है, उसने खुद ही मुझे बताया था कि उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई है उसके घर वालों ने, तो मैं बस इसी उम्मीद में, इतना बोलते हुए उसकी आवाज़ एकदम भर आई और वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। मनस्वी ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो जो कुछ भी हुआ हो, अगर तुम्हारी बात सच भी है, फिर भी तुम अगर गलत को सही करने के लिए एक और गलत कदम उठाओगे तो उससे कुछ भी सही नहीं होता विराज, इस बात को याद रखो और दोबारा से कभी भी ऐसा कुछ करने के बारे में मत सोचना, नहीं तो अगली बार तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूँ, आदित्य अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और उन दोनों की शादी जैसी भी हालातों में हुई हो, लेकिन इतने टाइम से साथ रहकर उन दोनों का रिश्ता पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधर गया है, इसीलिए इस बात को तुम भी जितनी जल्दी अपने दिमाग में बिठा लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मनस्वी ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलते हुए उसे ये सब समझाया। उसकी ये बातें विराज को कितनी समझ में आईं और कितनी नहीं, ये तो मनस्वी को भी पता नहीं चल पाया, लेकिन विराज ने उसके सामने खड़े हुए हल्के से हाँ में अपना सिर हिलाया। मनस्वी ने जैसे बात खत्म करते हुए कहा, ठीक है तुम अभी यहाँ से जा रहे हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे तो अनय को अच्छा नहीं लगेगा और मैं नहीं चाहती कि इन सब की वजह से हमारे रिश्ते, मेरा मतलब है हमें कोई प्रॉब्लम हो। इतना बोलते हुए मनस्वी ने वहाँ घर के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और फिर जिन लोगों की टीम वहाँ पर छोड़कर गई थी विराज पर नज़र रखने के लिए, उनमें से एक को उसने फ़ोन किया तो वो दोनों ही वहाँ पर आ गए और फिर मनस्वी ने अलग ले जाकर दोनों को कुछ समझाया। विराज वहाँ हॉल में ही बैठा हुआ था और एक गार्ड उसके एकदम पास ही खड़ा था इस वक्त उस पर नज़र रखने के लिए। विराज वैसे भी वहाँ से कहीं नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे पता था अगर वो वहाँ से कहीं भी भाग गया और रास्ते में आदित्य के हाथ लग गया तो फिर वो नहीं बचने वाला, इसीलिए चुपचाप अपनी जान की खैर के लिए वहाँ पर बैठा था और जो कुछ भी आज हुआ और इतने दिनों पहले हुआ था उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। उसने एक नज़र उठाकर दूर खड़ी मनस्वी की तरफ भी देखा, जो कि बॉडीगार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी, और फिर कुछ देर बाद अपने दोनों बॉडीगार्ड से बात करके मनस्वी वहाँ पर वापस आई और उसने विराज से कहा, विराज तुम्हें इन दोनों के साथ जाना है और कोई भी चालाकी मत करना अगर अपनी जान प्यारी है तो। विराज ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर मनस्वी ने उसे उन दोनों बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से रवाना कर दिया।